आस्तिक गाड़ी चला रहा था। अरुणिमा उसके साथ बैठी थी। वो हैरानी से आस्तिक की तरफ देख रही थी। उसे कभी नहीं लगा था कि आस्तिक उसके लिए कुछ करेगा, खासकर बिजनेस और उसके कारोबार के मामले में। आस्तिक ने कभी उसे इतना ज़रूरी नहीं समझा कि उसके नाम पर कोई मकान, दुकान या कम से कम एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीद ले। हालांकि शादी के वक्त अरुणिमा के पिता ने उसके नाम पर काफ़ी पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करवाया था, जो उसके भविष्य में काम आने वाला था। ठीक वैसा ही आस्तिक के पिता ने भी किया था। उन्होंने भी बैंक में आस्तिक और अरुणिमा के लिए एक बड़ी सेविंग कर रखी थी, ताकि दोनों अपना भविष्य अच्छे से मैनेज कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका वर्तमान ही मैनेज नहीं हो रहा था, भविष्य की प्लानिंग तो बहुत दूर की बात थी। अरुणिमा तिरछी नज़रों से आस्तिक को देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये बंदा आखिर है क्या। इतना तो वो समझ चुकी थी कि आस्तिक को बस उसकी बॉडी से अट्रैक्शन है, ना वो उससे प्यार करता है, ना ही उसमें उसके लिए इतना जुनून है कि उसके भविष्य की कोई प्लानिंग करे। फिर अचानक से अरुणिमा के नाम पर ज़मीन लेने की बात कहाँ से आ गई? वैसे आस्तिक ने कह दिया था कि ये उसके ब्लैक मनी की कमाई है, जिसे वो वाइट करना चाहता है। आस्तिक के नाम पर वैसे भी पहले से काफ़ी प्रॉपर्टी थी, और अगर वो अपने नाम पर और ज़मीन लेता तो इनकम टैक्स और सरकार की नज़र में आ जाता, जो कि वो नहीं चाहता था। इसीलिए वो अरुणिमा के नाम पर ज़मीन खरीद रहा था, और अगर कभी इनकम टैक्स की रेट भी पड़ गई तो वो कह देता कि ये उसने अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लिया है। आस्तिक अरुणिमा को ज़मीन दिखाने ले जा रहा था। ये हाईवे का सुनसान इलाका था। एक तरफ दूर दूर तक घने जंगल फैले थे और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन के बोर्ड लगे थे, जो बता रहे थे कि ये ज़मीन बिक चुकी है। ऐसे में अरुणिमा इस सुनसान जगह पर आस्तिक के साथ थी। आस्तिक ने एक नॉर्मल सी शर्ट और जीन्स पहनी थी। उसकी आंखों पर सनग्लासेस थे और वो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में कोई इंग्लिश गाना बज रहा था। अरुणिमा को ना तो आस्तिक में इंटरेस्ट था, ना ही गाने में, बल्कि वो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। अरुणिमा ने भी एक सिंपल कुर्ता पहना था। हमेशा की तरह चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था और उसके बालों का एक जूड़ा बना हुआ था। वो दुपट्टे से अपने पेट को ढकने की कोशिश कर रही थी। दरअसल वो आने वाले कल के लिए तैयार हो रही थी। जब उसका पेट हल्का सा उभरने लगेगा, तब वो इसी तरह अपने दुपट्टे से छुपाने की कोशिश करेगी, ताकि कुछ और दिन तक आस्तिक को इस बारे में पता ना चले। हाईवे खत्म होते ही जंगल का इलाका शुरू हो गया। रास्ता उबड़ खाबड़ था, जिसे आस्तिक की गाड़ी बार बार झटके खा रही थी। अरुणिमा के लिए ये काफ़ी डरावना था, क्योंकि हर झटके के साथ उसका पेट भी हल्का हल्का दर्द कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से सीट के हैंडल को कसकर पकड़ लिया, ताकि खुद को बैलेंस कर सके। उसने गुस्से से आस्तिक की तरफ देखा, लेकिन वो उस पर गुस्सा नहीं दिखा सकती थी। थोड़ी सख्त आवाज में बोली, धीरे चलाओ, कोई जल्दी नहीं है। जमीन अगर एक घंटे बाद भी देख लूंगी तो कुछ चला नहीं जाएगा। आस्तिक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने अपने एरोगेंट अंदाज में कहा, बिल्कुल जाएगा, मेरा एक घंटा चला जाएगा और मैं तुम्हारे ऊपर या उस जमीन के ऊपर एक घंटा बर्बाद नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे ये काम जल्द से जल्द खत्म करना है। सीट पकड़ लो, गाड़ी स्पीड पकड़ने वाली है। जैसे ही आस्तिक ने ये कहा, अरुणिमा की आंखें बड़ी हो गईं। इतनी खराब सड़क पर वो और झटके बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, अगर तुमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो देख लेना। आस्तिक ने चश्मे के अंदर से उसे घूरते हुए पूछा, क्या करोगी तुम? अरुणिमा की आंखें अब भी आस्तिक के चेहरे पर थीं। उसने सख्त लहजे में कहा, तो मैं तुम्हें आज रात कमरे से बाहर निकाल दूंगी। अचानक आस्तिक ने ब्रेक लगा दी। गाड़ी झटके से रुक गई। उसने अरुणिमा की तरफ देखा। आज तक अरुणिमा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे इस तरह धमकी दे सके। मतलब अब अरुणिमा को पता चल चुका था कि आस्तिक की कमजोर कड़ी उसी के पास है। आस्तिक ने धीरे से अपने गॉगल्स उतारे और चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आई। वो धीरे धीरे अरुणिमा की तरफ झुकने लगा। अरुणिमा उसे अपनी ओर आता देख घबराई और हल्का सा पीछे हट गई। आस्तिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम मुझे अपनी बॉडी के नाम पर ब्लैकमेल कर रही हो? अरुणिमा का एक हाथ अब भी अपने पेट पर था। उसने कसकर अपने कुर्ते को पकड़ा और ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, गाड़ी धीरे चलाओ, वरना मैं यहीं उतर जाऊंगी। नेविगेशन के सहारे वहां पहुंच जाऊंगी जहां जाना है। तुम बचाओ अपना एक घंटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है जमीन देखने की। तो यही वो बात है जो तुमने अपने पिता से कही थी, कि तुम्हें ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो तुम्हारे नखरे उठाए, खर्च नहीं। आस्तिक के इतना कहते ही अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। आस्तिक को ये बात कैसे पता? ये तो उसने सिर्फ अपने पिता से कही थी, वो भी तब जब वो कॉलेज में थी। उसने अपने पिता से कहा था कि उसे अपनी लाइफ में ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ उसके नखरे उठाए, खर्च वो खुद उठा लेगी। तुम्हें ये कैसे पता? अरुणिमा एकदम से चौंक गई और आस्तिक से पूछने लगी। आस्तिक ने दोबारा अपने सनग्लासेस पहन लिए और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता। गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने हल्का सा अपना चेहरा खिड़की की तरफ किया, लेकिन जो उसने देखा उससे वो तुरंत सतर्क हो गया। उसने गाड़ी बंद कर दी और खिड़की की तरफ हैरानी से देखने लगा, शायद वो किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। दो मिनट बाद जब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत नहीं देखा, तो वो एकदम से सतर्क हो गया। सीट के नीचे से अपनी गन निकालते हुए उसने उसे लोड किया और अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा, सीट के नीचे झुक जाओ,
अरुणिमा जो अभी अभी सीधी होकर बैठी थी एकदम से हैरान रह गई और आस्तिक की तरफ देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि आस्तिक ने ऐसा क्यों कहा। क्या कहा, अरुणिमा ने हैरानी से पूछा। आस्तिक गुस्से में उसकी तरफ देखता है। उसका चेहरा पूरी तरह सख्त हो चुका था। अभी अभी जो आस्तिक उससे नॉर्मली बात कर रहा था, अब वही उसे गुस्से से घूर रहा था। उसकी निगाहें इतनी खतरनाक हो गई थीं कि अरुणिमा डर गई। आस्तिक ने उसके कंधे को पकड़ा और अगले ही पल उसे सीट के नीचे धकेलते हुए रहा, नीचे झुक जाओ और जब तक मैं ना कहूं तब तक बाहर मत आना। अरुणिमा एकदम से घबरा गई क्योंकि अब उसने आस्तिक के हाथों में गन देख ली थी। बहुत ही कम ऐसा वक्त आता था जब आस्तिक अपनी बंदूक निकालता था। स्टीयरिंग व्हील पर लगे फोन से आस्तिक ने नीरज को कॉल किया। जैसे ही नीरज ने फोन उठाया वो खुद घबराया हुआ था। उसने जल्दी से कहा, सर मैं आपको ही फोन करने वाला था, मैं बस कहने ही वाला था कि जहां है वहीं रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। आस्तिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मल्होत्रा को मारना है क्या? फोन स्पीकर पर था इसलिए अरुणिमा भी सब कुछ सुन सकती थी। नीरज की घबराई हुई आवाज आई, सर मैंने मल्होत्रा के लोगों से बात की है पर उन्होंने अपने कदम पीछे लेने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि या तो आप ये जमीन छोड़ दीजिए या फिर वो आपकी जान ले लेंगे। आस्तिक अपनी गन में बुलेट डालते हुए बोला, मल्होत्रा को साफ साफ बता दो आस्तिक रायचंद ने कभी पीछे हटना नहीं सीखा और जिन कुत्तों को उसने मेरे पीछे लगाया है उन्हें भी बता देना कि कुत्तों ने आज तक शेर का शिकार नहीं किया। नीरज की आवाज आई, मतलब वो आदमी सही कह रहा था, आपको अकेला देखकर वो हमला जरूर करेगा। आस्तिक ने गुस्से में गन का लॉक खोलते हुए कहा, बात इस वक्त मेरी नहीं है नीरज, अरुणिमा मेरे साथ है, वरना ऐसे कीड़े मकोड़ों को मैं अपने पैरों तले रौंद देता।
आस्तिक ने हल्का सा शीशा नीचे किया और अगले ही पल झाड़ियों की तरफ फायरिंग कर दी। जैसे ही गोली चली झाड़ियों से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, यानी सच में वहां कोई था और उसे गोली लगी थी। तभी चारों तरफ से कुछ लोग काले कपड़ों में हाथों में बंदूकें लिए निकल आए और एक एक करके आस्तिक की गाली को घेर लिया। ये लोग करीब 10-12 थे और आस्तिक अकेला था, वो भी अरुणिमा के साथ। नीरज मुझे कवर चाहिए, आस्तिक ने गुस्से भरी आवाज में उन लोगों को लाल भयानक आंखों से घूरते हुए कहा। नीरज जल्दी से बोला, सर आपके लोकेशन के मुताबिक हमारे आदमी जल्दी नहीं पहुंच सकते, वे इस वक्त शहर में हैं और आप जंगल में, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, वे जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आस्तिक ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक नज़र अरुणिमा की तरफ देखा जो सीट के नीचे छुपी हुई थी। उसकी आंखें डर से लाल हो गई थीं और चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो बहुत डर रही थी क्योंकि उसने खिड़की के पास से झांक कर देखा था कि उनकी गाड़ी को पूरी तरह घेर लिया गया है। अरुणिमा डरते हुए आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक ने अपना हाथ बढ़ाया, अरुणिमा के माथे पर रखा और उसका पसीना पोंछते हुए उसकी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पता नहीं ये विश्वास था या कोई अनजाना भरोसा, पर अरुणिमा को आस्तिक की बात पर यकीन हो गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया क्योंकि आस्तिक की आंखों में उसे अपनी हिफाजत का जुनून नजर आ रहा था।